स्वागतमस्तु अयि मित्रगणाः. अद्य पुनरपि आगच्छति रविवासरः. वयं पठामः रेडियो मधुबनस्य श्रव्यमञ्चे पठामि संस्कृतम् इति अस्माकं प्रतिसप्ताहस्य कार्यक्रमं. वयं पठिष्यामः पातञ्जलयोगसूत्राणि. नमस्कार मित्रगण, आज फिर रविवार है, तो रेडियो मधुबन के श्रवण मंच से अपना साप्ताहिकी कार्यक्रम पठामि संस्कृतम आरंभ करते हैं. और आज हम आरंभ करेंगे पातंजल योग सूत्र के 29वें सूत्र से. एकोनत्रिंशतितमं सूत्रम वर्तते, ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च. तो इसके पहले सूत्रों में बताया कि ओंकार ही ईश्वर का वाचक है और वह ईश्वर हमारे अंदर बसा हुआ है, उसी को पुरुष विशेष कहा गया है. और ये भी कहा कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, अर्थात उस पुरुष विशेष के अंदर सर्वज्ञता का बीज वर्तमान है. और चूंकि उसका वाचक प्रणव है, तो प्रणव के जप से उस पुरुष विशेष की भावना तक हम पहुंच सकते हैं. इतना कह देने के बाद अब आज का 29वां सूत्र पतंजलि मुनि बताते हैं. ततः अर्थात तब, वह जो ओंकार है, प्रणव है, उसके जप से, अर्थात जब जप करते हैं तब. और प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च. तो इतनी लंबी संधि है इतने सारे शब्दों की. प्रत्येक का अर्थ हुआ जो हमारी प्रचिति में आता है, जिसकी हमें अनुभूति हो सकती है. और जब वह अनुभूति आने लगती है, तब हमारी चेतना को उसका अधिगम अर्थात उसका साक्षात्कार होता है. और उस साक्षात्कार के कारण जो भी अंतराय हैं, अंतराय अर्थात विघ्न, तो जो भी विघ्न है उनका अभाव हो जाता है. अर्थात वे जो भी विघ्न आएंगे वे स्वयं ही नष्ट होते चलते हैं. और इसी के साथ जोड़ करके अगला सूत्र देखते हैं कि व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः. तो जो अंतराय आते हैं, जो विघ्न आते हैं, उनका भी पतंजलि मुनि हमें वर्णन कर देते हैं ताकि हम उन्हें पहचान सकें. तो ये सारे विघ्न हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व. तो व्याधि क्या है? जब हमारे शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कुछ गलत खा लिया, कफ हो गया, पित्त हो गया इत्यादि, ये हुई व्याधियाँ. स्त्यान अर्थात अकर्मण्यता, कोई काम करने के लिए अगर हम योग्य नहीं हैं तो वह हुई अकर्मण्यता, उसी को स्त्यान कहा जाता है. तो कर्म करने की भावना हमें नहीं होती. या फिर संशय उत्पन्न होता है कि अरे करने से कोई लाभ होने वाला है या नहीं होने वाला है, मैं करूं या ना करूं, पता नहीं क्या मिलने वाला है, इस प्रकार का संशय मन में होता है. और प्रमाद, प्रमाद अर्थात जो भी हमने मार्ग निश्चित किया है उस रास्ते पर चलने से हम खुद ही आनाकानी करने लगते हैं, उसके प्रति अनादर प्रकट करते रहते हैं, तो उसे कहेंगे प्रमाद. और आलस्य, जिस रास्ते पर चलने का निश्चय किया उस पे चलने में भी हम आलस्य करते हैं. तो प्रमाद और आलस्य में अंतर ये है कि दोनों का फल तो एक ही है, लेकिन आलस्य में हम आलसवश उस रास्ते पे नहीं चलते, और प्रमाद में हमारे मन में एक अहंकार भी होता है. और फिर भ्रांति दर्शन, और भ्रांति का अर्थ है कि किसी बात का सत्य स्वरूप समझ में ना आना, स्वरूप कुछ है और हम कुछ अलग सोच लें, तो उसे कहेंगे भ्रांति. अर्थात हमारे मन में अनेक अनेक भ्रांतियां भी आती हैं, और फिर अविरति अर्थात हम किसी दूसरी वस्तु की इच्छा में लग जाते हैं, तृष्णाएं उत्पन्न होती हैं, और चित्त जप में स्थिर ना होकर उन्हीं इच्छित वस्तुओं के पीछे मन भागता है, तब उसे कहते हैं अविरति। और अलब्ध भूमिकत्व अर्थात समाधि के रास्ते पर चलते हुए जो पड़ाव हमें मिलते हैं या जो भूमिकाएं हम ले सकते हैं, वे हमें उपलब्ध ना हों या उनका हम कोई लाभ नहीं उठा सकें, तो ऐसी अवस्था को अलब्ध भूमिकत्व कहेंगे। जबकि अनवस्थितत्व अर्थात चित्त एक ही जगह पर अवस्थित या स्थिर नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति को अनवस्थितत्व कहेंगे। तो ये सारे के सारे अंतराय ही हैं, विघ्न ही हैं। तो पतंजलि मुनि गिनाते हैं कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये सारे चित्त के विक्षेप हैं जो कि विघ्नों को उत्पन्न करते हैं। चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः अर्थात चित्त विक्षेपः ते अंतरायाः। अगले सूत्र में पतंजलि मुनि हमें बताते हैं कि जब इस प्रकार के विघ्न आते हैं, अंतराय आते हैं, तो उनके साथ साथ दुख भी आते हैं। मुनि कहते हैं दुख दौर मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। यहाँ शब्द आया है सह भुव, तो सह भुवः का अर्थ हुआ सहचर, किसी के साथ साथ उत्पन्न होने वाला। और विक्षेप सह भुवः का अर्थ हुआ कि पहले सूत्र में जो विक्षेप बताए गए हैं उन्हीं के साथ साथ ये चारों भी अर्थात दुख, दौर्मनस्य, अंगमे जयत्व और श्वास प्रश्वास, ये भी उन विक्षेपों के साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं। और दौर्मनस्य का अर्थ हुआ कि जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उसके कारण जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे दौर्मनस्य कहते हैं। जैसे भगवद गीता में भी कहा है कि कामात् क्रोधो भी जायते, काम के कारण, काम की तृप्ति न होने के कारण या काम की पूर्ति न होने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, तो ऐसे क्रोध को दौर्मनस्य कहा जाता है। तो दौर्मनस्य अर्थात जो हमारा मन चाह रहा है वह उसे नहीं मिलता है, तो मन जो है वो गुस्से में आ जाता है, उस अवस्था को कहते हैं दौर्मनस्य या क्रोध। अंगमे जयत्व का अर्थ होता है शरीर में कंपकंपी आना, तो क्रोध के कारण या दुख के कारण शरीर कांपने लगता है, उस अवस्था को अंगमे जयत्व कहेंगे। और श्वास प्रश्वास हमारे स्थिर नहीं होते, वे अस्थिर हो जाते हैं और वे भी शरीर में विघ्न और व्याधियां उत्पन्न करते हैं। तो इसके साथ साथ मुनि उसका उपाय भी बताते हैं अगले सूत्र में। अगला सूत्र है तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यासः, उसके प्रतिषेध के लिए जो व्याधियां और दुख उत्पन्न होते हैं उनके प्रतिषेध के लिए, उनके निरोध के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात किसी एक वस्तु में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके फिर अभ्यास करना चाहिए कि चित्त क्षोभ ना हो, दौर्मनस्य ना हो, व्याधियां ना हो, दुख ना हो इत्यादि। तो ये पतंजलि मुनि हमें एक एक सीढ़ी पे चलना सिखा रहे हैं। पूर्ण समाधि की अवस्था पहुंचने की एक सीढ़ी वो बताते हैं कि किसी एक वस्तु का आश्रय लेकर के, किसी एक वस्तु पे ध्यान केंद्रित करके हम इसका अभ्यास कर सकते हैं कि कैसे चित्त से दुख, व्याधियां और दौर्मनस्य को दूर रखा जा सकता है। तो मित्रों आज मैं यहाँ रुक जाती हूँ। अगले रविवार अगले सूत्रों को भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और जहाँ तक हो सके उन्हें अपने आचरण में भी उतारेंगे। बस इसी के साथ आप लीना मेहंदड़े को अनुमति दो। नमस्कार, आप सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो।